एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम जिस विषय के गहराइयों में उतर रहे हैं वो है राष्ट्रवाद।
हाँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत जो दुनिया भर में मतलब सुर्खियां बटोरती है, लोगों को जोड़ती भी है और कभी कभी बांटती भी है।
बिल्कुल, और इसी समझने के लिए हम आज स्टीवन ग्रॉसबी के काम को देखेंगे, खास तौर पर उनकी किताबें नेशनलिज्म ओरिजिन्स डेवलपमेंट एंड परसिस्टेंस और नेशनलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इनसे जो विचार मिलते हैं उन पर बात करेंगे।
और ये विषय देखिए आज के दौर में कितना अहम है। ऐसा लगता है कि दुनिया जितनी जुड़ रही है, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, उतनी ही कहीं ना कहीं अपनी जड़ों अपनी पहचान को लेकर ज्यादा संवेदनशील भी हो रही है।
सही बात है, दुनिया भर की राजनीति में, समाज में, यहाँ तक कि हमारी अपनी बातचीत में भी राष्ट्रवाद की बूंज सुनाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीज है क्या और इतनी शक्तिशाली क्यों है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में स्टीवन ग्रॉसबी हमारी मदद कर सकते हैं।
वो क्लेमसन यूनिवर्सिटी में धर्म के प्रोफेसर हैं।
हाँ, और उनकी पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ समाजशास्त्री नहीं है,
नहीं।
वो धर्म इतिहास, खासकर प्राचीन निकट पूर्व,
अच्छा।
जैसे पुराना इसराइल, इन सबके भी जानकार है। और वो जाने माने समाजशास्त्री एडवर्ड शिल्स के छात्र भी रहे हैं।
अरे वाह, तो ये जो अलग अलग विषयों का ज्ञान है, इतिहास, धर्म, समाजशास्त्र, ये उन्हें राष्ट्रवाद पर एक खास नजरिया देता होगा।
बिल्कुल, और इसी वजह से वो उन आधुनिकतावादी विचारों को चुनौती दे पाते हैं जो मानते हैं कि राष्ट्रवाद बस पिछले कुछ 100 सालों की ही देन है।
हाँ, जैसे कि वो औद्योगिकरण या प्रिंटिंग प्रेस का नतीजा है।
एग्जैक्टली, ग्रॉसबी कहते हैं नहीं, जरा और पीछे देखिए, इसकी कहानी और पुरानी है।
तो ग्रॉसबी का मुख्य तर्क क्या है, अगर इसे मतलब संक्षेप में कहें तो?
देखिए, उनका मुख्य तर्क ये है कि राष्ट्रवाद न तो पूरी तरह से नया है और न ही ऐसा कि हजारों साल पुराना हो।
अच्छा।
इसके आज के जो रूप हैं, संस्थाएं हैं, वो बेशक आधुनिक हैं, लेकिन इसकी जड़ें, इसके जो बुनियादी तत्व हैं, वो बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने।
और वो बुनियादी तत्व क्या हैं जिन पर ग्रॉसबी जोर देते हैं? आपने कहा तीन खास बातें हैं।
हाँ, तीन मुख्य स्तंभ। पहला, एक खास जमीन, एक भूभाग से गहरा भावनात्मक लगाव, जिसे हम मातृभूमि या पितृभूमि कह देते हैं।
जमीन से जुड़ाव।
दूसरा, ये विश्वास कि हम सब एक साझा वंश या रिश्तेदारी से जुड़े हैं, भले ही वो रिश्ता असलियत से ज्यादा कल्पना में हो।
काल्पनिक रिश्तेदारी। हाँ।
और तीसरा, एक आम सार्वजनिक संस्कृति। इसमें भाषा, रीति रिवाज और खासकर ग्रॉसबी कानून पर बहुत जोर देते हैं।
अच्छा, कानून पर। ये वाकई उन विचारों से अलग हैं जो कहते रहे हैं कि राष्ट्रवाद तो बस औद्योगिक क्रांति या छपाई मशीन आने के बाद पैदा हुआ।
बिल्कुल, ग्रॉसबी कह रहे हैं कि भाई बीज तो बहुत पहले बो दिए गए थे, और उनका मकसद राष्ट्रवाद की तारीफ करना या उसे कोसना नहीं है।
नहीं, वो बस समझना चाह रहे हैं।
हाँ, वो इसकी जटिलता को समझना चाहते हैं, ये इतना टिकाऊ और असरदार क्यों है आखिर।
उनकी किताबें हमें एक तरह की वैचारिक यात्रा पर ले जाती हैं। परिभाषा से शुरू करते हैं।
हाँ, फिर अलग अलग थ्योरीज को देखते हैं, इतिहास में इसकी जड़ों को टटोलते हैं, और आखिर में आज की दुनिया में इसकी चुनौतियों पर बात करते हैं।
तो चलिए इन्हीं पहलुओं को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ग्रॉसबी राष्ट्रवाद को सिर्फ देशभक्ति या अपने जातीय समूह से प्यार से अलग कैसे देखते हैं?
देखिए, देशभक्ति शायद देश की सरकार या जमीन से प्यार है, जातीय लगाव अपनी बिरादरी या संस्कृति से हो सकता है। ग्रॉसबी कहते हैं राष्ट्रवाद इससे ज्यादा है। इसमें वो तीन स्तंभ तो हैं ही, क्षेत्र, वंश, संस्कृति, कानून, लेकिन साथ में एक मजबूत राजनीतिक इच्छा भी है।
राजनीतिक इच्छा मतलब?
मतलब ये कि हमारे राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य होना चाहिए। ये सिर्फ भावना नहीं, एक राजनीतिक लक्ष्य भी है।
अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है। तो पहला स्तंभ है क्षेत्र यानी जमीन, और यहाँ ग्रॉसबी का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये मातृभूमि है, एक तरह से पवित्र जगह है। ये वो मिट्टी है जिससे हमारी यादें, हमारा इतिहास, हमारे पुरखों की कहानियां
और भविष्य की उम्मीदें
जुड़ी हैं। हाँ, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा है।
इसका कोई उदाहरण देते हैं वो?
हाँ, वो प्राचीन यहूदियों का जिक्र करते हैं, उनके जमीन जिसे वो जियोन कहते थे, आज का इसराइल, हजारों साल तक बिना किसी अपने राज्य के भी दुनिया भर में फैले होने के बावजूद उस जमीन से उनका नाता बना रहा। ये दिखाता है कि जमीन सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं होती,
वो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाती है। सही बात है।
फिर आता है दूसरा स्तंभ, वंश, यानी ये विश्वास कि हम सब एक ही खानदान से हैं,
जिसे आपने काल्पनिक रिश्तेदारी कहा, फिक्टिव किनशिप।
हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्र के करोड़ों लोग सच में खून के रिश्तेदार हैं, पर यह एक गहरा एहसास है, एक भावना है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं, हमारे पुरखे एक थे।
हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे हम भारत माता कहते हैं या एक दूसरे को भाई कहने लगते हैं किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर, ये हम की भावना पैदा करता है।
बिल्कुल, ग्राज़बी प्राचीन यूनानियों का उदाहरण देते हैं, वो खुद को हेलेंस मानते थे और बाकी सबको बर्बर।
अच्छा।
या प्राचीन इजरायली जो मानते थे कि वो सब अब्राहम की संतान है, ये भावना जबरदस्त एकजुटता पैदा करती है।
और तीसरा स्तंभ है साझा संस्कृति और कानून। भाषा रीति रिवाज तो है ही, लेकिन आपने कहा कानून पर खास जोर है।
हाँ, ग्रॉसबी का मानना है कि किसी राष्ट्र के कानून सिर्फ नियम कायदे नहीं होते, वो उस समाज के नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं, उसके अच्छाई बुराई की समझ को दिखाते हैं। एक जैसे कानून लोगों को जोड़ते हैं, उन्हें बताते हैं कि एक समूह के तौर पर उनके लिए क्या सही है क्या गलत।
जैसे प्राचीन इसराइल में टोरा की भूमिका रही होगी।
एग्जैक्टली, वो एक कानून भी था और संस्कृति का आधार भी।
यहीं पर राष्ट्रवाद के अध्ययन की वो बड़ी बहस आती है, क्या ये हमेशा से था, मतलब पेरिनियलिज्म?
हाँ।
या ये आधुनिक है, मॉडर्निज्म?
आधुनिकतावादी क्या कहते हैं संक्षिप्त में?
आधुनिकतावादी जैसे अर्नेस्ट गेलनर या बेनेडिक्ट एंडरसन मानते हैं कि राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की देन है।
गेलनर का तर्क था कि फैक्ट्रियों को एक जैसे मजदूर चाहिए थे।
हाँ, एक भाषा बोलने वाले, कहीं भी काम करने को तैयार, इसलिए राष्ट्रवाद जरूरी हो गया। और एंडरसन ने प्रिंट कैपिटलिज्म की बात की।
अखबारों और किताबों ने लोगों को जोड़ा, एक काल्पनिक समुदाय बनाया।
बिल्कुल,
भले ही वो कभी मिले ना हो, तो इनके लिए राष्ट्रवाद एक आधुनिक आविष्कार है पूरी तरह से।
और ग्रॉसबी स्पन क्या कहते हैं, उनकी आलोचना क्या है?
ग्रॉसबी कहते हैं कि ये आधुनिकतावादी विचारक एक जरूरी बात भूल रहे हैं। हाँ, ये सच है कि आधुनिक तकनीक, शिक्षा और सरकारों ने राष्ट्रवाद को ज्यादा ताकतवर, ज्यादा फैला हुआ जरूर बनाया है,
इसमें तो कोई शक नहीं,
लेकिन वो इसकी गहराई और भावना को गलती से उसकी पैदाइश समझ बैठे हैं।
अच्छा, मतलब इंटेंसिटी को ओरिजिन समझ लिया।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की जो बुनियादी सामग्री है, जमीन से प्यार, अपने लोगों से जुड़ाव, साझी संस्कृति, ये तो बहुत पहले से मौजूद थी।
वो फिर से प्राचीन इसराइल का उदाहरण देते हैं।
हाँ, जहाँ जमीन, ज़ियोन, वंश, अब्राहम से और कानून, संस्कृति, टोरा, ये तीनों चीजें आधुनिक युग से सदियों पहले मौजूद थीं और लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती थीं।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। लेकिन ग्रॉसबी राष्ट्रवाद का सिर्फ सुनहरा पक्ष नहीं दिखाते, वो इसके दोहरे चेहरे की बात भी करते हैं, जेनस फेस्ड।
हाँ बिल्कुल, जैसे रोमन देवता जेनस के दो चेहरे थे, एक आगे देखता था एक पीछे, राष्ट्रवाद भी वैसा ही है।
कैसे?
एक तरफ ये लोगों को आजादी के लिए लड़ने, लोकतंत्र बनाने, एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित कर सकता है।
हाँ, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हुआ, हम भारतीय की भावना ने लोगों को एकजुट किया।
सही, लेकिन इसका दूसरा भयानक चेहरा भी है, यही राष्ट्रवाद विदेशियों से नफरत, ज़ेनोफोबिया जिसे कहते हैं, अपने से अलग दिखने वालों पर जुल्म, यहाँ तक कि युद्ध और नरसंहार का कारण भी बन सकता है।
ये हम और वे का खतरनाक बंटवारा करता है।
बिल्कुल, ये विरोधाभास इसके अंदर ही छुपा है। अपना समुदाय बनाने के लिए सीमाएं खींचता है, वफादारी जगाने के लिए दुश्मन गढ़ता है और अपनों को शामिल करने के लिए दूसरों को बाहर निकालता है।
तो अगर हम ग्रॉसबी के विचारों का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें क्या उभरती हैं?
पहली तो यही कि राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी हैं, ये सिर्फ आज की बात नहीं है।
दूसरी, जमीन या क्षेत्र का महत्व, ये सिर्फ नक्शा नहीं, पहचान का केंद्र है।
तीसरी, इसकी विरोधाभासी प्रकृति, ये जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है, आजाद भी करा सकता है और जुल्म भी कर सकता है।
चौथी, संस्कृति और राजनीति का गहरा रिश्ता, हमारी कहानियां, हमारे प्रतीक, वो राजनीतिक ताकत बन जाते हैं।
पांचवी, धर्म और राष्ट्रवाद अक्सर साथ चलते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और छठी,
आधुनिकता ने इसे बदला है।
हाँ, आधुनिकता ने राष्ट्रवाद को बदला है, उसे ज्यादा संगठित और शक्तिशाली बनाया है, पर उसकी नींव पुरानी है। और हाँ, ये हर जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग देशों में इसका रूप अलग होता है।
ग्रॉसबी के कुछ विचार तो सच में दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे उनका कहना कि राष्ट्रवाद सिर्फ अपने लोगों से प्यार नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मकसद भी है।
हाँ, अपने राष्ट्र के लिए एक आजाद देश बनाना या उसे बनाए रखना।
और ये टिकाऊ इसलिए है क्योंकि ये हमारी कुछ बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करता है।
बिल्कुल, कहीं का होने का एहसास, बिलोंगिंग जिसे कहते हैं, जीवन में अर्थ की तलाश और सुरक्षा की भावना, शायद यही वजह है कि ग्लोबलाइजेशन के बावजूद ये खत्म नहीं होता।
और वो बार बार जोर देते हैं कि जमीन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, कहानी का मुख्य किरदार है, पहचान जमीन से जुड़ी है।
और ये विरोधाभास वाली बात फिर से कि समुदाय बनाने के लिए सीमाएं जरूरी हैं, वफादारी के लिए विरोध जरूरी है और अपनेपन के लिए परायापन जरूरी है।
सुनने में अजीब लगता है पर शायद इंसानी समाज ऐसे ही काम करता है।
शायद।
तो आज की दुनिया में इन विचारों का क्या मतलब है? हम इन्हें अपने आसपास की घटनाओं को समझने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, आजकल दुनिया भर में राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार दिख रहा है। ग्रॉसबी के विचार हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।
क्या ये अपनी संस्कृति खोने का डर है,
या राजनीतिक स्वायत्तता की इच्छा,
या फिर जमीन से जुड़ा कोई पुराना लगाव? मतलब बिना किसी का पक्ष लिए हम कारणों की गहराई में जा सकते हैं।
या जैसे हमारे अपने देश में, जहाँ इतनी विविधता है, अलग अलग भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज,
हाँ,
यहाँ राष्ट्रीय एकता और विविधता का सम्मान के बीच संतुलन बनाने की जो चुनौती है,
हाँ,
उसे भी ग्रॉसबी के नजरिए से देख सकते हैं।
बिल्कुल,
ये हम कौन हैं कि एक लगातार चलती बहस है।
और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को देखिए, खासकर जहाँ जमीन को लेकर विवाद है।
हाँ, ग्रॉसबी हमें याद दिलाते हैं कि ये झगड़े सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं होते, इनमें जमीन से वो पवित्र लगाव वाली भावना भी शामिल होती है,
जो उन्हें बहुत ज्यादा भावनात्मक और मुश्किल बना देती है।
सही कहा।
और शायद ये हमें अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल,
हम खुद को किस जगह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, कौन सी कहानियां, कौन से प्रतीक हमें अपनापन महसूस कराते
हैं, हमारी पहचान में इन चीजों का क्या रोल है।
तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक क्या है?
शायद यही कि राष्ट्रवाद एक बहुत ही जटिल, बहुत ही गहरी और शायद इंसानी फितरत का हिस्सा है।
इसे सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता,
इसे समझने की कोशिश करनी होगी।
हाँ, ये हमारी पुरानी जड़ों और आज की राजनीतिक हकीकतों का एक शक्तिशाली मिश्रण है।
और ग्रॉसबी हमें शायद यही सिखाते हैं कि इसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय हमें इसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए,
ताकि ये जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। इसकी दोनों संभावनाओं को, समावेशी और बहिष्कारी दोनों को ध्यान में रखना होगा।
और एक आखिरी बात सोचने के लिए,
हाँ, ग्रॉसबी हमें राष्ट्रवाद को सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा की तरह नहीं, बल्कि इंसानी समाज को संगठित करने के एक बुनियादी तरीके की तरह देखने को कहते हैं, जिसकी जड़ें शायद हमारे इतिहास और मनोविज्ञान में बहुत गहरी हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।